सबसे सर्वोत्तम मुझे वंदना है। बाकी मुगल ही चैतन्य चैतामृति भी था, उन्होंने के नाम बदल दिए गए और इसका नाम चैतन्य चैतामृति। जीव गोस्वामी के ग्रंथों का, रूप गोस्वामी के ग्रंथों का सबकी पर्यालोचना करने के बाद में ये चैतन्य चैतामृत ग्रंथ जो लिखा तो इसमें यह सिद्धांत दार्शनिक और रसिक ये दोनों ग्रंथों इसको समझने के लिए भक्ति रसांत सिंह उज्जवल में नाटक संहिता और सब जितने ग्रंथ हैं श्रीमद सागर है, वेद है, पुराण है, परिषद है, ये सबको जो खबर रखा होगा ये इसको समझ सचिव बंगला में है उनसे पुनः भाव बंदी है कि इससे संस्कृत में टीका हुई और वो टीका दूसरे नहीं विश्वनाथ चतुर्थी शादी ने खूब की है। इतनी सुंदर इसकी और गंभीर भावना है। इस श्लोक से ही आप लोग उसकी कल्पना करेंगे। साधारण का श्लोक होने पर भी बड़ा गंभीर इसका भाव, जैसे इसमें भागवत का एक श्लोक बदंती तत्व दिव्यान अत्वनम ब्रह्मे की परमात्मे की भगवान रुचि अद्वय ज्ञान ब्रजेंद्र नंद वैज्ञानिक है वही अद्वय किसी का जो बदला अद्वय बड़ा गंभीर श्लोक है। कितने कितने पृष्ठों में उसकी सब आचार्यों ने टीकाकार उसकी टीका की और अद्वय ज्ञान भी शब्द ही बड़ा गंभीर है किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं ये सिद्धांत ग्रंथ भी है रस ग्रंथ भी कृष्ण लीला अमृत है और महाप्रभु जी की लीला उसमें मिला दिया तब उसमें और पूरी मिला दी तो वो रस में सुगंध और उसमें और भी महत्वपूर्ण को भर गया। संचार्य रामा विदभक्त कहे थे मेघे तो भक्ति सिद्धांत कयाम बताएं गौराध्य रेत गंगा तीर्ण व्यक्त अपना वैतान प्रयास संचार के राम विध भक्त मेघे संचार्य चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में जाए गोतावरी के तट पर गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रस समुद्र है रस के समुद्र है रस मैंने क्या भक्ति उसके स्वयं ये समुद्र अरे घर में जगह है तो घर में क्यों किसी इतना बैठे और आप चले तो चैतन्य महाप्रभु रस के समुद्र और उसको उपमा के द्वारा समझिए तब ये समझने जल्दी है। समुद्र होता है ये पानी का जल का आधार पुनर्धार और मूल आधार जितना पानी है सब समुद्र में किसी न किसी रूप में जो कुछ पानी इस पृथ्वी पर है ऊपर पर है वो किसी न किसी रूप में समुद्र का ही पानी पानी और है ही नहीं है सब जहां भी कुछ पानी है कैसे उससे पानी से मेघ संचरित होता है और समुद्र से मेघ होता है और मेघ चारों तरफ विस्तीर्ण होकर के वर्षा करता है और वो पानी सर्वत्र और फिर वही पानी किसी न किसी रूप में समुद्र में आता है और फिर मैं होता फिर चारों तरफ वर्षा होती है, फिर नदियों के माध्यम से तालों के माध्यम से किसी न किसी रूप में जो है वो संपूर्ण। जैसे मान लिया कि हमारे शरीर से पसीना आया और वो पसीना जो आया था वो गया कहां किसी न किसी रूप में उसमें खो गया, बाल होता है हमें तो ये कैसे सूखा, सूख के पाप से या कैसे हवा से के द्वारा और उसके काम उसने मिल करके। और जो मेघ बूंद फिर बरसात हुई, यहाँ पर एक बूंद हम पानी गिराएंगे तो ऊपर से नीचे नाली में, नाली में से वहां, वहां से वहां, फिर नल के माध्यम से जमुना, जमुना से गंगा, गंगा से भी कहीं न कहीं किसी रूप में यहाँ पर पानी सूख गया तो उसका पेपर कहां गया आकाश, किसी न किसी प्रकार से फिर वो समुद्र में पहुंचेगा जलाधार जहां से निकलता। तो समस्त जितने भी रस हैं, विचार हैं, सिद्धांत हैं, सबके रूप उत्तम फल कृष्ण है, ये कृष्ण ही वैतन्य महाप्रभु है। तो ये जैसे समुद्र से वाष्प बना और मेघ बना आकाश में है। अच्छा ये मेघ कैसे बना, वाष्प हुआ कैसे, सूर्य की किरणों, बिना सूर्य के किरणों की सहायता के वाष्प नहीं। और समुद्र भी है और ये सूर्य भी है, चैतन्य महापुरुष अपने आप लक्षित रूप में मेघ बन, मेघ बन हुआ फसल उतारने मेघ हुआ न और वहां से बरसा ही, फिर वो पानी समुद्र में गया। और एक प्रोसेस है, यदि यही पानी बरसा पानी रोहिणी नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र में पड़े, स्वाति नक्षत्र स्वाति नक्षत्र और वह समुद्र में गिरे जाएंगे तो उसमें शीत होंगे और अशांत के ही खुले होते हैं, वो पानी उनमें जाकर होता है और पानी पाने से वो शीत में मुक्त होता है। अब वो इसी का पानी ऊपर गया, फिर आकाश से फिर लौट करके आया, पाकि नक्षत्र में आया और समुद्र के रहने वाले सीपों में वो पड़ा, फिर वो मूर्ति बन गया। बिल्कुल सब समुद्र को प्रार्थना है रचना, पहले रचना कर नहीं क्योंकि उसी का पानी पाकि नक्षत्र में जाकर के ऊपर से फिर आकर के उसमें रख गया और वो सीपों में गया तो हो गया मूर्ति बेस्ट कीमती। और तब उसको रत्नालय संतोष होगा, रत्न का आलय। अच्छी ये जो सीप है समुद्र में उसमें उसकी पोटेंसी है रत्नों की, नकानी में है समुद्र के सीपों में उसकी पोटेंसी है, क्यों वही पानी स्वाति नक्षत्र का यदि सातों के ऊपर में पड़े तो वो हो जाता है मणि, हाथी के सिर पर यदि पड़े तो गजमुक्ता हो जाता है, खेल में पड़े तो कर्तून हो जाता है, गाय के खुद पर पड़े तो वो गुरुचना हो जाता है, मृग के ऊपर में किसी प्रकार से पड़े तो वो मृगनाधि हो जाती है, बांस में वंश विरोचन हो जाता है। एक ही पानी एक ही समय में दिया, अलग अलग वस्तुओं को मिला, अलग अलग वो चीजें बेस्टिंग की सभी चीजें, तो उन सब चीजों में पोटेंशियल है, उनकी सहायता भी उसी जल की और ये सीख घोड़े भी ये पानी से ही बना, समुद्र के पानी से और अलग से उनकी स्थिति नहीं। इसलिए यहां तक कह रहे हैं आप। अब इसी उदाहरण के संत चैतन्य महाप्रभु रस के सिद्धांत के रस सिद्धांत पर यह रस कैसे बनता है भक्ति में पांच माने शांत दास्य सख्त वात्सल्य और मध्य। ये जो है ये सब मिलाकर के एक रस समझ चैतन्य महाप्रभु इन सबके अवसर को अच्छी तरह से जानने वाले वो अवसर कहते हैं रस वैश्य रामानंद इत्यादि भक्त हैं। भगवान कृपा करके अपने भक्तों में भक्ति रस का संचार करते हैं। ये संचार तीन प्रकार का चार प्रकार से एक होता है उपदेश देकर एक होता है हाथ में भीतरी भीतर हृदय में उस भगत का संचार करते हैं भक्ति अवस्था। एक होता है दृष्टि से शक्ति का संचार करते हैं। ये आर्द्र बाकी ये तीन या तुमको ये काम दे तुमको सदन में भक्ति का रक्षा करते एक होता है चेत दिन के रूप में हृदय में उस चीज को उत्पन्न करते दिन उन्होंने विचार किया ऊपर से दिखाई पड़ता है कोई साधन भजन में वाले से हो गया ये चेत दिन के रूप में हृदय में अपनी दया का संख्या करके उसमें भक्ति रस को और एक दृष्टि के द्वारा देखा और उसके ऊपर में पिता हो गई सब कुछ उसके हृदय में रामानंद के हृदय में हाथ रहे भक्तों के ऊपर में हृदय से ही इच्छा की और भक्तों ने अपनी भक्ति का संचार कर दिया। संचार करके उनके द्वारा भी उन उपदेशों को सुना और सुन करके किया उसी को कहें संचार जरा विधर भक्त मेघे भक्त रूपी मेघ अर्थात रामानंद ने अपनी प्रेम रस को संचरित किया तो भक्ति सिद्धांत चयन होता क्या अपने भक्ति के सिद्धांतों को छुट्टि की और फिर उन्हीं के द्वारा सुन करके गोदाधरे कई अमुना बीते उनके मुख से फिर अपने आप सुना और सुन करके तत्व्यक्त उसको जाने और जान करके और फिर रत्नालय का भक्ति रत्नालय भक्ति के सिद्धांतों के रत्न रूपी आए हुए चैतन्य मैं चैतन्य महाप्रभु की तरफ यहां पर एक विचार लोग साधारण रूप में समझते हैं कि महाप्रभु दक्षिण देश में जाकर के रामानंद से प्रश्न पूछा उन्होंने उत्तर और महाप्रभु इसके बाद में सब तत्वों को जाना यह साधारण बात की ऊपर रामानंद महाप्रभु से अधिक नहीं जाना रामानंद पंथ के कल मैंने बताया विशाखा जी के स्वरूप उसमें और भी बातें एक अर्जुनिया रूपी और कुछ ललिता जी का भी अंश करते हैं ये तीन मिलकर थे अर्जुन अर्जुन या गोपी विशाखा और ललिता का कुछ ये सब मिलकर के पढ़ने के लिए रहे अर्जुन
कृष्ण के सखा है। कृष्ण लीला में महाभारत इत्यादि में कृष्ण अर्जुन के साथ थी और भगवत गीता इत्यादि समय के और कृष्ण के सखा के रूप में सब कुछ उन्होंने किया। कृष्ण के सखा अंतर से सत्ता दी किंतु इसमें उनकी तृप्ति नहीं हुई, प्रीति नहीं हुई, इसलिए उनकी इच्छा हुई यदि मैं वृंदावन में मेरा जन्म होता और मैं गोपी बनता और गोपी की कुछ सेवा करता था तो हमारा जीवन होता जो कि भाव से कृष्ण की सेवा। ये इसी प्रकार से सुना उन्होंने कृष्ण की लीला में, कहां से सुना? अपनी मैया, उनकी मैया कान में सुना उनकी जी, उनकी जी कृष्ण का के साथ में उनका संपर्क था भक्ति विदाओं को और उन्होंने सब कुछ समझ लिया और उनका इसके प्रति विरोध था, इसलिए अर्जुन को भी रोक दिया और उन्होंने पूर्णिमा जी की कृपा से अर्जुनी गोपी बने और उनकी कुछ सेवा करना की लालसा हुई। फिर इसके बाद उन्होंने ब्रज में कोई राशि काल में सम्मिलित हुए कि नहीं ये कहीं कुछ नहीं, बस वहां तक लिखा। तो वो अर्जुनी गोपी भी थे, अर्जुन का कुछ भी था और विशाखा भी गोपी, विशाखा की भी कम जानने वाली नहीं। कृष्णचंद्र मूल है, सब कुछ जानने वाले हैं, समस्त रसों के विषय हैं, रस के लिए समुद्र हैं, किंतु एक भी उनमें कमी है कुछ, तो वो वैद्य गोदावरी में उसके पहले जब आविर्भूत हुए थे उस समय तीन वांछाओं की पूर्ति के लिए वो अवते हुए रामाया प्रणय महिमा की त्रिषा अनया, पहला राधाया प्रणय महिमा के भूत, राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसा प्रणय है, कृष्ण का राधा जी के प्रति प्रणय है वो कृष्ण को उपलब्धि है, किंतु राधा जी का जो प्रेम है वो प्राण स्थिति में पहुंच करके कृष्ण के प्रति कैसा उनको उन्मादित कर देता है, किसको? राधा जी को। कृष्ण उतने उन्मादित नहीं होते हैं जितने भी राधा जी को उन्माद हो जाता है। क्यों हो जाता है? मेरे मुख में कैसा माधुर्य है, मेरे गुरु में, मेरी क्रियाओं में कैसा माधुर्य है, एकदम उन्मादग्रस्त हो जाती और उस समय उनको कैसा लगता है, कौन सा सुख आनंद उनको प्राप्त होता है, इन तीनों चीजों को जानने के लिए उनकी लालसा। राधा जी का भाव लिया और अंगों की कांति लेकर के औते हुए, किंतु जानते तो हैं किंतु अनुभूति नहीं है। अनुभूति के पहले जो कुछ होता है उसको कहते हैं ज्ञान और जब उसकी अनुभूति होती है उसको कहते हैं विज्ञान। कृष्ण शांत रस के विषय है, दास रस के विषय है, सख रस के विषय है, बासल रस के और मधुर रस के विषय है, आश्रय नहीं है, भक्त लोग इसके अपने अपने रसों से आश्रय हो। विशेष करके राधा जी माधुर्य रस की आश्रय आश्रय है। कृष्ण इस चीज को आस्वादन करना चाहते, ज्ञान तो है किंतु विज्ञान नहीं है। समुद्र है उसमें रत्न नहीं है, ये रत्न कैसे मिले? यदि राधा जी खुद अथवा उनकी विशेष शक्तियां यदि इसको अनुभव करा सकें तो ये संभव हो सकता है, उसमें विशेष शिक्षा की जरूरत है। इसलिए ये यहां पर गए तो रामानंद जी से, रामानंद जी से प्रश्न कर रहे हैं, ये बतला रहे हैं। उनको ज्ञान तो है किंतु अभी विज्ञान नहीं है कृष्ण को, क्योंकि वो विषय है आश्रय नहीं। इसलिए विशाखा जी से उन्होंने सुना, विशाखा जी ने उस विषय की दीक्षा उनको दी और उन सब विषय को अच्छी तरह से बतलाया, कैसे अनुभूति के साथ में बतलाया, एक एक उदाहरण देकर के साथ पहुंचे और साथ साथ में अनुभूति कराते हुए कृष्ण को ऐसी सब चीजों को बताया। इसके बाद में जो कर्म महापुरुष को जान करके उस अवस्थ में डूब गए और वहां से लौट करके गंभीरा ले इन्हीं के साथ में और समुद्र के साथ में उसी का रास्ता। इसीलिए कहते हैं तद ज्ञात्वा उसको जान करके, ऐसी कोई चीज है जो नहीं जानते, नहीं जानते हैं क्योंकि अनुभूति नहीं है। अब इसके बाद भी कृष्ण को अनुभूति हुई, जैसे कहीं कृष्ण की बंसी लीला में भी ऐसा सुना जाता है, कृष्ण की बंसी ले लिया और कहती है कृष्ण से हमको बंसी बजाना सिखला, आप उनको बंसी बजाने का अवकाश। यहां तक कि कृष्ण ने कहा कि आप इतने छोटे शरीर में इतना बड़ा मान कैसे रख रखते हैं, तो हमको थोड़ा सा मान करना सिखला देंगे, देखिए तो तुम हमारे कपड़े पहन ले और मैं आपका कपड़ा पहन ले। उनको कपड़ा पहना करके उनको बना दिया गोपी और अपनी बन गई वो, और उनको सिखलाने लगी कि ऐसा कर मैं यहां आऊं तो तुम बोलना मत, मुंह सीधा करके बैठ जाना, मैं जितना भी मनाऊं तुम मानना मत। अच्छा देखो मैं अब जा रही हूं, अब आऊंगी मनाने के लिए, तुम कुछ सर ही तुम मत मान। तो बस चली गई और थोड़ी देर के बाद में वो आई तो कृष्ण बने हुए गोपी से खिला लिया और ये मना रहे वो मंत्री सचमुच में ऐसा हो गया कृष्ण को ये सचमुच में हिम हम पता नहीं। तब राधा जी ने देखा तो ये मंत्री पता है मैंने तो तुमको सिखाया मानकर और हमसे ही तुम मान कर रहे। इस तरह से शिखरा ने है ज्ञान से तुम्हें की खुद कर ली और इसके द्वारा विज्ञान अर्थात तो उसके द्वारा ये लोग सीखते हैं। तो उसी तरह से चैतन्य महापुरुष स्वयं रस के स्वरूप है, सर्व अंतर ज्ञान है, सर्वज्ञ है, सर्वरसों को भी जानते हैं, किंतु तुम्हारे पर भी वो प्रेम के विषय है इसलिए भक्तों के आश्रय को नहीं, इसलिए कभी कभी स्वयं भक्त हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण स्वयं भक्त होकर के भक्तभाव में से सख्त का भी भाव उसका भी आश्रय कर समस्त भक्ति के रसों के आश्रय होकर के सीख करके और उपास कर, केवल राधा भाव ही नहीं भक्ति सखी का। अब दोनों भी रहे हैं हम लोग दिशा है समुद्र के किनारे बैठे थे, रामानंद जी आए गाड़ी बजाते हुए हजार ब्राह्मणों के साथ में, ब्रह्म लोग सूत्र ये सूत्र कर और इतने गंभीर और विद्वान और ये बाल सन्यासी सूत्र के समान ब्राह्मण बालक और उस पर भी बहुत उच्च कोटि का सन्यासी और इसको आलिंगन करके आप दोनों लोग रहे हैं दोनों दोस्त को रहे हैं ये गांव नहीं समझ सके उनके दिमाग में। ये बात प्रीति रामलीला में थी, रामचंद्र जी सबरी के यहां मिले गए, सब ऋषि लोग रामचंद्र जी के यहां जा रहे और रामचंद्र जी खुद कहां गए सबरी के, वहां जाकर उसकी जीव की देख खाई सब ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु यहां एक तालाब है पंपा सरोवर, पानी इसका बहुत पहले निर्मल था, जब से ये भूमि आई है और हम लोगों ने आश्रम छोड़ा इसी के मारे, गुरु जी के पास में आने लगी, हम लोगों ने मना किया कि ये तू इसको यहां पर मत पुजारिए। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उसको कहा जो उसी को हम हरि कथा सुनाएंगे, तुम लोगों की सुनने की इच्छा तो सुनो नहीं तो पहले आश्रम से चलेगा। तो हम लोग इसी के मारे चले गए और तब से इस सरोवर का पानी गंदा हो गया, इसमें कीड़े पड़ गए और पानी पीने के आप कृपा करके इसकी पानी इसका पानी सुंदर स्वच्छ निर्मल कर दी, नहीं तो पानी कहीं नहीं मिलता है। तो प्रभु जी थोड़ा सा हंसती हंसती का आशय यह था कि बुढ़िया के कारण उसका पानी गंदा नहीं हुआ बल्कि तुम लोगों के पापों से ये गंदा हो, तुमने उसमें ऐसी भावना की शुद्ध की भावना जो भगवान का वर्ण करता है कदापि शुक्र और शुक्राणी नहीं हो सकता। तुम्हारे गुरु जी क्या विचार ठीक था, तुम लोगों ने गुरु का निरादर किया और अपमान किया और अवहेला कि इसलिए तुम उन स्वर्ग में गए, तुम्हारे स्पर्श से स्वर का पानी बन रहा है, ये दुनिया की वजह से। यदि तुमने ऊपर से ये बतलाया कि दुनिया के चरण को धो करके जब हुआ पानी यदि सरोवर में डाल दिया जाए तो पानी नहीं मिलता, सब कुछ में उनको तो पहले ऐसा नहीं था किंतु फिर भी उसके पैर को धो करके रामचंद्र जी के कारण से और सरोवर में डालते ही पानी स्वच्छ है। भक्तों में नीच जाति इत्यादि की भावना कदापि नहीं रखनी चाहिए। स्मार्ट ब्राह्मण लोग स्मार्ट जो ऋषि होते हैं वो लोग किंतु ऐसा ही जाति पाति का विचार उन भक्तों में भी रखते हैं, भगवान में भी रखते हैं। शायद वो लोग रामचंद्र जी का विचार भी नहीं खा सकते थे, क्यों कि रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और कृष्ण द्वारा थे, बहुत से ब्राह्मण लोग कृष्ण को भोग भी नहीं लगाए क्योंकि वो जाति के द्वारा थे, ब्राह्मण होते तो लगा लेते, इसलिए शालक राम की पूजा करेंगे कृष्ण राधा जी की पूजा नहीं करेंगे। बहुत से उत्तम ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं पढ़े लिखे विद्वान लोग जो किसी को गुरु नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, अरे हम ब्राह्मण हैं सबके गुरु और मैं किसको गुरु बना, तो मैं नीचा में जाऊंगा, इसलिए जीवन के अंत तक तो गुरु नहीं बनाते और अंत में नीचे से तो गुरु का और वर्ण का अभिमान रखना ये भी स्मार्ट है, इसलिए इसको छोड़ करके अपना आत्ममंगल करना चाहिए। सभी जितने जीव है सभी भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज इसलिए भक्तों में कभी भी जाति बुद्धि इत्यादि नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण स्मार्ट थे खड़े थे पूर्व में देखा, अरे कहां ये सन्यासी उत्तम चिंता वैष्णव ब्राह्मण और कहां ये शूद्र और ये राजा गंभीर और दूर मिलकर के यहां लोट पोट रहे और लोग आंखों से आंखों की धारा गिर रही है, उनके समझ में कुछ नहीं आया, उनका शूद्र और ब्राह्मण और सन्यासी बस यही पता करके जब कुछ नहीं मिला कि उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। महाप्रभु जी ने कहा आज देर हो जाएगी, अभी काम मिल जाएगी और हम भी अपना अपना आदमी दोपहर जाकर करके बीच काम कर, इतने में एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु जी को आज उन्हें निमंत्रण आपका हमारे घर पर, महाप्रभु जी ने शिकार कर महाप्रभु ब्राह्मण में भी जो भक्त रहता था उसी के घर में जाया करते थे या उसके घर का देने से वो कुछ नहीं करते, विषयी लोगों का जो विषय में अत्यंत आसक्त है ऐसे लोगों का कभी भी कोई अन्न ग्रहण नहीं करते, बहुत सावधानी करते, हमारे रूप सनातन भी ऐसे ही रहते, विषय लोगों का अन्न नहीं देते, विषय लोगों का अन्न लेने से चित्त मलिन हो जाता है और मलिन चित्त में भी भगवान का भजन नहीं होता है। चेतन महाप्रभु उस ब्राह्मण का जीवन पश्चिता किए चले गए। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा सुन कहिया दुनिया से इस थाने के वसी गए तो यहां महाप्रभु बन के महाप्रभु जी ने कहा साथ में पता चाहिए कविता तुम्हारे दिन तुम्हारे मेरी तो मुझे कई बात सात नंबर का चार दिन हमको जब मैं फ्री से चला तो हमको बताया आपके शुरू परम भगवान भक्त है और रसिक भक्त है। मैं रागानंद को पहले नहीं समझ सका किंतु जब से आपकी कृपा में तब से अब मैं उनको समझ रहा हूं। आज विश्व में उनके समान परम भक्त रसिक भक्त और ब्रज के भावों को लेने वाले भक्त उनके समान है। इसलिए आप जाए तो उनसे जरूर मिले मेरे कहने से महाप्रभु उनकी बात करते क्यों करते मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तुम्हारे मिलने वाले को देखा भाव भाई आने आपके पाए आने आप ही आपका दर्शन मिल गया। मैं जिस दिन को जाता भगवान की कृपा से संतों का मिलने वाला एक दुर्लभ है किंतु पूर्व जन्म का संस्कार का अनुयाती अहमियत का संग हो जाता है उसके लिए प्रयास नहीं होता। साधारण लोगों के लिए वजन बड़ा है राय का हिसाब हम करें राय कमान जी ने कहा कि महाप्रभु जी हमको साधन जी हमको अपना सेवक जानते हैं और परोक्षण हुए ही तय वो नहीं है यहाँ तो भी चाहते हैं कि इसका कल्याण हो इसलिए परोक्ष रूप में आप ही के पास हमको भेजा। मैं आपसे मिलने में और आपकी कृपा को प्राप्त करने में उन्हीं को कारण समझ रहा है उन्हीं के कारण से ऐसा हुआ है ताकि बात आई तुम्हारा दर्शन आज सफल भाई मेरे वंश थे आज मेरा सफल जीवन हो गया आप जैसे व्यक्ति को रायानंद साथ हम तुम्हारा कृपा ताकि चिन्ह अस्पृश्य अस्पृश्य ने भैया भाई यहाँ पर आपने इनके अभिमुख अस्पृश्य मैं शुद्ध इत्यादि तो छूने लायक है तभी आपने कृपा करके हमको स्पर्श किया और आनंदन डाल दिया आपकी कृपा शुद्र किसने कर है शुद्र नहीं राजकाज में रहने के कारण आपने तो शुद्र समझ में दूसरे किंतु यथार्थ नहीं ऐसा क्यों होता प्रेम स्वरूप प्रेम संबंध जिसको प्रेम होता है वो अपने को दीन ही नहीं समझता है बिना कभी सुनी के करो रही सुनना हमारी ना मान दे फिर प्रेम नहीं होता। ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है जिसको भक्ति होगा वो जरूर अपने को दीन ही नहीं समझेगा नीच समझेगा ये भक्ति का ही स्वरूप है। क्यों अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है जब स्वरूप एक छोटा सा पाइप टूल पड़ता है वो लोग समझते हैं और साधुओं के संग के लिए सब समय लालायित होते हैं इसलिए दिन भी होते हैं बिना भिन्नता के भक्ति नहीं मिल सकती न वैष्णवों का संग हो सकता उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता यदि दिन होंगे तभी ये उठाया जा सकता है। कहां तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण कहां आप नारायण साक्षात हैं और कहां भी राज से उस विषय सूत्र कैसे ये जान लिया कि ये साक्षात नारायण दो विषय एक तो सन्यासी को सभी लोग नारायण के समान समझते हैं नारायण नमो नारायण दूसरी बात आकृति और प्रकृति से पीछे बतलाएंगे आकृति और प्रकृति से आकृति माने रूप और प्रकृति माने स्वभाव महाप्रभु जी का आगे बतला के प्रकांड शरीर कमल लोचन प्रकांड शरीर प्रकांड माने मनुष्य अपने साढ़े तीन हाथ का होता है अपना शरीर होता है साढ़े तीन हाथ साधारण पौना है छोटा है बड़ा है अपने हाथों से तीन हाथ का साढ़े तीन हाथ का माँ प्रभु जी या भगवान के जितने अवतार होते हैं सभी चार भाषो और उनका हाथ कहाँ तक जाएगा अजान लंबित यहाँ तक सबका जाए हम लोगों का यहाँ तक रहेगा किंतु भगवान की पूजाएं बड़ी लंबी वो अपने
घुटने तक चली
अजान लंबी और अंगों की हस्वता और दीर्घता शास्त्र के अनुसार में होती है महापुरुषों के कौन कौन से अंग उनके छोटे होंगे कौन कौन से विस्तीर्ण होंगे जैसे मस्तक विस्तीर्ण है ललाट विस्तीर्ण कमर पतली होगी
नासा
उन्नत आंखें कमल के समान बड़ी पड़ी हुई ये सब उसके लक्षण है बहुत से मात्र उन लक्षणों को शास्त्र को नहीं जानते हैं उसने उन्होंने मार किया ये लंबी लंबी पूजाएं हैं शरीर भी चार हाथ का है अत्यंत सुंदर है सुगठित है और प्रकृति माने क्या बड़े दयालु इतने दयालु हम जैसे व्यक्ति को जो छूना नहीं चाहिए उसको और इनके देखने से ही ब्राह्मणों को प्रेम उत्पन्न हो गया उनके भी आंखों में आंसू आ गए ये साधारण लोगों को नहीं होता है ये भगवान का विशेष गुण है जहां देखते ले ऐसे कृष्ण हैं
एवं दयालु
ऐसे दयालु हैं कि पशु पक्षी कीट पतंग भी महाप्रभु या कृष्ण को देख करके यहां तक की लता होती है लताएं कृष्ण के छोड़कर के और कौन सा अवतार ऐसा है जिन्होंने लताओं को पताओं को भी प्रेम बस एकमात्र कृष्ण का ही अवतार है इसके बाद में ये चैतन्य महाप्रभु जी लताओं को भी प्रेम हो जाता है जिधर जिधर से रास्ते से जाते हैं गए हैं आज भी वहां पर हम लोग जाते हैं जब तो देखते हैं अपूर्व भाव बंगाल में वह जिस पथ से वो समुद्र को गए थे और यहां से लौटे हम लोग 24 पटना इत्यादि स्थान में मेदनीपुर में पिछलता इत्यादि स्थान में जाते हैं देखते हैं वहां पर आज भी स्त्री पुरुष सभी बड़े भक्त होते हैं हम लोग के मध्य में अधिकांश जितने लड़के थे आए हैं उधर के सदन में उधर जब जाते हैं गुरु जी जाते थे उनके साथ में हम लोग जाते थे 10-20-25 सन्यासी ब्रह्मचारी सब लाल लाल कपड़े सब चलते थे उनके साथ गुरु जी ऐसे ही प्रचार में जाते तो इन स्थानों में हम लोग जाते थे तो गुरु जी की अगवानी करने के लिए 40-50 मृदंग और शंख स्त्रियां चारों तरफ में शंख बजा रही हैं और घड़ियाल और घंटा बजने लगे और हरि ध्वनि सब कर रहे थे इस तरह से आंखों से आंसू आ जाते थे ये सब सुनकर एक साथ में 50 मृदंग बजे ना और उसका पिछला भार मानवता की मेघ गर्जन कर रहा है अपने आप वह नाच उठता है अभी भी महाप्रभु जी इस स्थान से गए थे उन ऐसे भक्ति की भावना अभी भी ये देखते हैं कौन सा भाग भाग जैसे चक्रवर्ती है काशी नगर है इसी सब रास्ते से हम करते सफर ये गंगा के किनारे किनारे तो जहां पर सीधा भोजन हुआ था अनानी हाथी अन्य हाथी इत्यादि सब अभी भक्ति के सब स्रोत ये सब है महाप्रभु जी की भगवान के विशेष पर्व उन्होंने लक्ष्य किया कि ऐसे ही ये दयालु हमारे अंदर में भी कभी इतना प्रेम नहीं आया जो आ जाए और इन ब्राह्मणों को जो स्मार्ट थे उनके अंदर में भी ऐसा आ गया इसलिए मालूम पड़ता है ये तो आकृति और प्रकृति से ये भगवान है तुमने हमसे कोई भेदभाव और घृणा नहीं की मोरे स्पर्श ना करेंगे घृणा पर वेद पर मोर दर्शन प्रमाण वेद नहीं से हमारा दर्शन और स्पर्श तो वेदों में नहीं सिद्ध किया गया किंतु आपने उसकी बात न मान करके हमको स्पर्श कर दिया ये सबरी का सबरी से पुनी लकन्या हिलनी दिल्ली का स्पर्श इत्यादि नहीं कर रहे और उसमें भी वो ही, इसलिए ऋषियों का समुदाय जा रहा था और उसके गुरु थे
मातंगरी।
इसकी इच्छा हुई कि मैं जाऊं, थोड़ा सा सुन लीजिए ये लोग क्या सत्संग करते हैं। तो वो बहुत दूर से जाकर के दंडवत प्रणाम ऐसे करके साष्टांग मिट्टी में उसी दिशा में बहुत दूर से, और वहीं पर सोई रह गई जब तक परिहर कथा होती। इसी बात में हरि कथा समाप्त हो गई। ऐसे वो करती और जो प्रतिदिन जिस रास्ते से साधु संत लोग जाते थे वहां ऋषि उसको झाड़ती थी, यहां तक कि अपने केसों से झाड़ती थी कष्ट न हो। और गुरु जी के लिए गुरु जी मन ही मन मान लिया था, उनसे संबंध नहीं था, उनकी बात बहुत दूर से सुनी थी, किंतु अपना दिल बना लिया मन ही मन में। और लकड़ी हवन के लिए उनके आश्रम के लिए कहां कहां से सूखी लकड़ी चुनकर कचरी बांधकर और रात में लेकर के पास में जैसे यहां से उठा बोलते थे वैश्विक। इन लोगों ने ऋषियों ने कहा कि एक वहां पर आती है दिल्ली, आप उसको मना कर दीजिए आश्रम में मत प्रवेश कर, वो आश्रम में आ जाती है, वहां ताती नहीं थी दूर, आप उसको मना कर दीजिए ना, आप नहीं कहेंगे हम लोग मना कर देते हैं। ऋषि तुम्हें बुला रहे हैं, जब ये लोग जाते थे किसी उनमें से तो कोई एक सेवक होने अच्छे, उन्होंने जाकर पूछे आपको बुला रहे हैं, अरे मैं कैसे वहां जाऊं, मैं तो कुछ चल डाली हूं, तभी तो आपको बुलाई नहीं। वो गरीब दूर से जाकर के प्रणाम किया, बड़े आदर के साथ ऋषि ने वहां पर बैठा, तभी रोज प्रतिदिन आना और यहीं पर बैठ करके हर कथा सुनना, इधर नहीं ये लोग बैठेंगे तुम यहीं पर बैठा नहीं करते बैठ करके सुनो। ऋषि लोग पड़े रोक किया इसका सभा में उसका, हम लोग ब्राह्मण हैं आप शिष्य हैं, यहां पर स्त्री और स्त्री में भी शूद्र कैसे आ सकती है, स्त्रियों के लिए हाँ अभवित समझ में आई और तो गोबर से भी कौन है कहीं आप उसको मत बुलाए। उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों को आपत्ति है तो आप लोग मत आइएगा, किंतु ये जरूर है लेकिन इतना बड़ा भाई है ना बस मना कुछ हरण है और बाकी अधिकांश जीत लेते हैं सकते। उन्होंने अपना स्थान उनको दे दिया सभी को और कहा कि राम तुमको यहां पर दर्शन देने के लिए आएंगे, इन लोगों को दर्शन नहीं देंगे, ताल बहाना बना देंगे और तुम भक्ति के अतिरिक्त कुछ मांग मत मांगो और तो ये झूठा भी यहां पर आकर के खाएंगे, तुम यहीं पर जमे रहो, अब मेरा परलोक जाने का समय होगा, बस ऐसा करके शरीर को छोड़ करके और अपने दिव्य शरीर से वैकुंठ धाम को चले गए और वो आश्रम खुशी को दे दिया। तब पीछे से रामचंद्र जी वहां पर, तो वहां पर ईश्वर का विचार नहीं, वहां पर आत्मतत्व का विचार होता है, जो उनको विचारों को ग्रहण करता है। सभी लोग इन विचारों को नहीं लेंगे, जिनका पूर्व जन्म का संस्कार है वो इन विचार, अन्यथा किसी को नींद आएगी, जैसे बहुत से लोग ब्रह्मचारी को सो रहे हैं, कोई दूसरा इधर भी सो रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है उसको, और जिनको समझ में आएगा जो काफी मुझे बता संस्कार को ग्रहण कर। महान स्वभाव ये सारी से कमाओ नीचे का जना ही बारे जान आन भर महान कभी स्व कहते हैं। सनातन गोस्वामी ने महान महान शब्द की टीका की है, काम का श्रीमद भागवत में के श्लोक है, महत विचरणान मेरी नीलान गृहान दिन के सामने से आया भगवत अंधकार पर पते और एक और है श्लोक महत विचरणान नीलान न और
महान सबसे साथ
बहुत बिना पृथ्वी भूता पृथ्वी 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 पालन करते हैं ये दोनों श्लोक पढ़ लग एक समान है। यह कह रहे हैं महाप्रभु को ये महत्व विचारना। महाप्रभु जी ने कहा कि हम आपके लिए आए हैं, आपके दर्शनों के लिए, क्योंकि साधन भट्टाचार्य ने कहा था आपका दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं आया। अब उसका ये जवाब ये दे रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। महत्व का स्वभाव ये है, अपना कोई कार्य नहीं है तो भी दूसरों को कृपा करने के लिए वो चलते हैं। इसलिए यहां पर महत विचार, महत मैंने क्या, उसी की सनातन गोस्वामी जी क्या है, भगवत निष्ठ भगवत भक्ति परायण व्यक्ति को महत्व। महत कौन है? महान संसार में सबसे बड़े महान कौन है? कृष्ण भगवान। उनको जितने धारण करने वाले जो है वो महत्व, उनके प्रति जिसकी प्रीति हो स्वाभाविक रूप में वो महान है, अन्यथा वो कोई भी महान नहीं। महत्व अपि महियान और अपि अनियान, भगवान कहते हैं मान से भी महान है, गुरु में भी सब विषय है, सबकी सामर्थ्य सब। ऐसे महान पुरुष को मान भगवान को अपने हृदय में धारण करना, उनके प्रति जो कृति रखता है वही महान है, दूसरा कोई भी महान नहीं हो सकता। आजकल इसका विचार नहीं कर, आजकल विचार करते हैं जिसके पास में थोड़ा सा है, सब हो गया, पद हो गया, धन हो गया, वो महान हो गया, किंतु इससे बल्कि वो गिर गया। जिसका चित्त भगवान के पास है, भगवान को प्रेम करता है, या प्रेम रूपी संपत्ति जिसके पास में है वो है। ऐसे जो महान पुरुष है मत विचरणम, उनका भ्रमण करना, चलनम विचलनम विशेष रूप से चलना, वो किस लिए चलते हैं? अपने दुख के लिए जाते हैं, जैसे किसी से कोई हमको दे दो, अरे वो तो आत्मा आराम है, उनको जरूरत नहीं, उनका तो पेट अपने ही भर जाएगा, जहां इसके लिए नहीं जाते, अपने किसी स्वार्थ के लिए जाएंगे नहीं। मृदान गृहिणान दीन चेतसाम निश्लेषाय, जो मनुष्य है गृही है, मनुष्य में भी जो गृही है और गृहों में जो दीन है, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण करने के लालसा से ही वो जाते हैं उनके घर, अन्यथा नहीं जाते, उनका कल्याण करने के लिए जाते। निश्लेषाय माने दो चीजें होती हैं, एक प्रेयर एक प्रेयर। प्रेयर उसको कहते हैं अपनी आवश्यकता के लिए जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, अपने धन के लिए या जो धन है तो उसकी रक्षा के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको कहते हैं प्रेयर ना? और श्रेय कहते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो कुछ किया जाता है उसको कहते हैं श्रेय। महापुरुषों का श्रेय और प्रेयर दोनों एक होता है, वो जो कुछ प्रार्थना क्या करते हैं भक्ति की, भक्ति ही कल्याण है, इसलिए श्रेय और प्रेय उनका दोनों। साधारण लोगों का ये अलग अलग होता है, तो जो अपने दूसरों जीवों के कल्याण के लिए भगवत भक्ति को प्रदान करने के लिए उसको उस कर्म बोलने के लिए दूसरे से, किनको? एक तो मनुष्य, उसमें भी गृहिणी, गृहिणी माने गृह में फंसे हुए जो व्यक्ति है, गृह में फंसे हुए माने स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु जमीन जायदाद संपत्ति पशु बगीचे, ये सब हैं विषय, इनके इसमें जो फंसा हुआ है वो गृही है, जो फंसा हुआ आसक्त नहीं है उसमें रहता हुआ भी गृही नहीं है, ये भी तो घर है, इसलिए हम लोगों को भी गृही कहना चाहिए। महाप्रभु जी भी तो कपीट में रहते थे, बड़े बड़े संत लोग कपीट के अतिरिक्त और कहां रहे हैं? तो वो गृही है, पहले तो गृहिणी चाहिए, गृही के लिए गृहिणी के बाद में बाल बच्चे चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए और उसमें आसक्ति चाहिए, सब लोग ऐसा आसक्त हो गया जो भगवान का स्मरण नहीं, दो मिनट के लिए समय नहीं होता, दस मिनट के लिए समय नहीं होता, जब समय भी होता तो इतना भी मान, मैं समाज का इतना बड़ा भारी व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनने के लिए मैं जाऊं और उनके साथ में एक आसन पर और नीचे बैठ, वो मेरे लिए संभव, मैं इतना बड़ा भारी विद्वान धनी मान। इसलिए यहाँ के जो धर्म कर्म नहीं जानते कि तुम्हें धनी वो लज्जा के दर्शनी, उन लोगों में एक समान में कैसे आए, यहाँ पर बहुत से धनी मान आदमी है उसमें द्वेष तो आ जाते हैं किंतु अधिकांश नहीं जाते इस सब न किसी भी कथा में जाएंगे, मान उनको ये सबसे बड़ा। ऐसे जो गृह दीन दीन मान उनको कोई पूछता नहीं, जो कोई जिसको नहीं पूछता कोई आश्रय नहीं रह गया सब तो मैं दुखी क्या करेंगे, एक और मन तो होना चाहिए, चलो भाई जान वहां पर जाकर के कुछ समय अपना निकाले, कुछ अच्छी अच्छी बातों को सुने, पैसा भी नहीं देते, प्रणामी में भी कहते हैं जब भाई कथा हो जाएगी तो शाम को प्रणामी दे देना, ये भी नहीं मान, उनके कथा का आदि और आरंभ भी नहीं है, जो पूर्णाहुति के दिन में भी कुछ दे देना ये भी नहीं है, कुछ कहावत हो जाएगा, रुक्मिणी का विवाह भागवत जब होता नहीं सकता, रुक्मिणी का विवाह
बामन देव का
और बामन देव का आविर्भाव और रुक्मिणी को जब पुत्र होता है या शाम उस समय में बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, तो सब उत्सव का वो सब सामग्री कौन देता है,
भागवत
नंद उत्सव भी होता है वहां
रामचंद्र,
तो ये सब दीन जो है कहीं जिसका आश्रय नहीं है ऐसे लोगों को कृपा करने के लिए जो आ नहीं सकते हैं बता सुनने के लिए, भगवान की तरफ में रुचि नहीं है, ऐसे दीनहीन गृही जो मनुष्य है निशेषा उनका कल्याण करने के लिए हे भगवान आप जैसे महत् व्यक्तियों का यहां पर आना होता है, हमारे ये कह रहा है कौन, नंद बाबा कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, करदाता किस समय कह रहे हैं, कृष्ण और बलदेव का नाम कर्म संस्कार में जब वो उन्होंने विजय वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहां तो नंद बाबा जी का, अच्छा देखो नंद बाबा गृही है दीन दिन है न कि कौन से उनमें, अच्छा गर्दाचार्य का सौभाग्य बड़ा है ना नंद बाबा का सौभाग्य, गर्दाचार्य लाख जन्म में भी नंद बाबा की क्षमता नहीं करेंगे, उनकी चरण की धूली होना भी बड़ा कठिन है, जिनके गोद में कृष्ण सब समय खेलते हैं, लालित होते हैं, पालित होते हैं, चुंबन करते हैं, इनका जो सौभाग्य मिलेगा, नाम कर्म के समय में उन्होंने कृष्ण का हाथ देख करके अपने हाथ में लिया कांप गए बाल कृष्ण का, और समझने कि आज हमारा यह पूर्वताई करना आज हमारा सार्थक हो गया, ये प्रभु का खुलासा स्पष्ट हो गया, वो जानते हैं कि ये भगवान ये यशोदा इत्यादि नंद बाबा ये सब भगवान का अपमान वहां पर कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से अपना लाल व्यापार समझते, इसलिए वो कहते कि हम लोग गृही हैं संसार में फंसे हैं दिन, आप जो वर्गाचार्य हैं आपको बस तेज दिन भेज, आज हमारे ऊपर में उनकी बड़ी भारी कृपा हुई और आप जैसे महान ये व्यक्ति यहां पर महत् व्यक्ति आपका यहां पर आज हमारा कल्याण हो गया, हमको जगा हरेक तरह चित्त समाध यदि संसार में भ्रमण करते हैं साधुओं का संग हो गया, समझो कि आज हमारा जन्म सार्थक हो गया और हमारा अब मुक्ति का भी संसार है, हमारा कल्याण ऐसा समझ लो, बिना ऐसा हुए साधुओं का संग कभी कदापि हो नहीं सकता। यहां पर एक प्रश्न और पूछना है, महत् विचरण, अच्छा उसको पीछे बदलाएं और इसका एक और अर्थ बदला, मान लिया कि कोई गृही व्यक्ति विषय में फंसा हुआ है और बड़ा दुखी है, यदि महत् व्यक्ति उसके पास में जाएगा तो उसे कुछ लाभ उठाएंगे कि नहीं, कुछ सुकृति तो हो सकती है किंतु उनका परम मंगल नहीं होगा, क्योंकि उनको समझेंगे नहीं, اس کے باتوں کو آدر نہیں کریں گے اور جو وہ کہیں گے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اس کا ارتھ اس روپ میں جدید کیا جائے. کیسے کیا جائے؟
چرن
سمست جنگ میں منشیہ جیون سب سے شریشٹ ہے. اس میں سادھو سنگ ہو سکتا ہے, بھگوان کی طرف سے بلایا جا سکتا, کنتو جدی وہ ویکتی ہین ہو, ہین مانے کو پورو جنم کا سنسکار سے کسی اچھے کل میں آیا ہوا ہے. کون سا ویکتی؟ پورو جنم جس کے سنسکار اچھے تھے, ویشنو کا کچھ سنگ ہوا کنتو سادھنا پوری میں اس سمے میں سیمتان سوچنا گیڑے جو ان کا ہوتا ہے جنم ہوتا ہے. ایسے ویکتوں کا جنم اچھے کل میں اور نہ بھری نہ بھری مدھم کل میں اور پوتر کل میں ان کا جنم ہوتا ہے. سوچی نام سیمت آئیں گے, سوچی نام میں پوتر کر جس میں مانس مچھلی پیاز لہسن انڈے گوشت دشکرم جھوٹا یہ سب نہیں ایسے کل. اور سیمتان کچھ دھنی بھی کھانے پینے کی بھی کمی نہ ہو. ایسے گھر میں جہاں پر بھکتی سخت بھگوان آتے ہیں وہاں پر پھر ان کے سمپرک سے ایسے سادھو مہاتماؤں کے تو پھر وہ روپئے سادھو سنگھ کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے, گرمت ہونا چاہیے اور دین ہی نہیں سمجھ. سادھو آئے نا محسوس کرتے کھڑے ہو جائے, اتنی بینتا کمتا ہونی چاہیے تو جا کے کھڑے آئیے پٹھا لیے بیٹھے پانی پیے گی پانی ڈالیے کچھ کھڑی کر پاتے. میں بہت دنوں سے پہلے مجھے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. اچھا بتلائیے تو پرتی کس کو کرتے؟ ہم نے سنا ہے کہ بس برجرس نام کی کوئی تھی, اچھی یہ برجرس کس کو کرتے؟ ایسا سا پرشن دن ہاتھ جوڑ دیا گلے میں یہ پتا. جب تک دن نہیں ہوگا نا تب تک سادھو کو نہیں سمجھے گا, ان سے ایسا پر پرشن نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں یہاں پر میں دین ہی ہوں. کون کا کہنا ہے وہ دھنی مانی دین پوتر کا کنتو دین ہی ہو رہے ہیں. اس لیے بھکتی ہے, اس لیے سنسکار ہے. اس لیے جن کے ہر میں کچھ سنسکار ہوا اور ان کے گھر میں سنت جائیں تو اس کا لابھ اٹھا سکتے ہیں, اور انتھا بڑے بڑے بھگوان بھی آ جائیں تو اور کسی لوگوں کے گھر میں جائیں وہ آ کر نہیں کریں. سادھو سنتوں کی تو بات کیا ہے, اس لیے کچھ سنسکار ہونا چاہیے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین ہوں, میں گرہی ہوں, آپ ہمارے کلیان کے لیے آئے. یہ تو ہوا. اس لیے پہلے ارتھ کی اپیکشا یہ ارتھ اچھا ہے کہ جن میں سنسکار ہیں, جن کا ہرے پوتر ہے, جو اپنے کو دینہین سمجھتے ہیں, جیسے سناتن روپ گوسوامی ہریداس ٹھاکر جی پرمیہ داس گوسوامی دینہین سمجھتے ہیں, ودور جی اپنے کو کیسا سمجھتے ہیں دینہین سمجھتے ہیں, ادھو جی اپنے کو دینہین سمجھتے ہیں, چرن گوپیوں کی چرن کی رج بننا چاہتے ہیں. یا اپنے مطلب بتانا ایسا سنسکار نہیں ہونے سے سادھو کے سنگ کا پربھاؤ نہیں. اس لیے ایسا تھا. اچھا مان لیے کہ یہاں تک تو اب ایک پرشن یہ اٹھتا ہے, مہت چلنا یہ مہت پروش یہ بھگوان کے لیے آیا ہے کہ بھکتوں کے لیے آیا ہے؟ ادارن تو ہے گدا چار بھکت ہیں, یہ نند بابا کے گھر میں گئے ہیں, نند بابا ان کو کہے بھکت کے. دوسری بات یہ جو دوسرا ادھارن ہے پہلے ویشو جو تھی بھوتا سائن پربھو تھی جو منتر کے دھیان وشوان پر لگا. آپ مہابھاگوت ہیں, مہابھاگوت کس کو کہتے ہیں؟ وشو برہمانڈ کا سب کچھ وپتی آنے پر بھی چت چنچل وہ بھگوان کے, اور وشو برہمانڈ کی سمست سمپت مل جانے پر بھی جن کا پر بھگوان کے چرنار بند سے تنک بھی ایسا دیکھو. विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाने पर भी उसकी भक्ति का कहीं भी कुछ नहीं होगा, उसी साथ उसका संपूर्ण सत्यानाश हो जाने पर भी उनका विचलित नहीं होते हैं भगवत भक्ति से। जैसे हरिदास ठाकुर को 22,000 में मारा गया, चित्त अविचलित, बल्कि उन्हीं की कल्याण की कामना। ऐसे पुरुष जो है महाभागवत, महाभागवत का भागवत में 10-15 श्लोकों में उसके लक्षण दिए गए। तो यहाँ पर आप जैसे जो भागवत हैं, ये कौन कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज जी विदुर के लिए कर रहे हैं। विदुर जी परम भागवत है और युधिष्ठिर महाराज जी भी परम भागवत है। महाभागवत को परम भागवत ही समझेंगे, दूसरा विषय कैसे समझेगा? इसलिए उनके लिए आप तीर्थों को पवित्र करने के लिए, तीर्थ बनाने के लिए आप तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, और दोनों श्लोकों के द्वारा यह समझाया जाता है कि भक्तों के लिए ये श्लोक है। तो ये रामानंद जी सचमुच में इनको भक्त मान रहे हैं ना भगवान मान रहे हैं?
भगवान
मान रहे हैं। तो फिर ये भगवान का तो श्लोक कहते हैं, ये भक्तों का श्लोक क्यों कहा? इसलिए कहा, जब भक्तों का ही इतना प्रभाव है, भक्त भी किसी भी गृह व्यक्ति के लिए तो उनका कल्याण करने के लिए जाते, अपने कुछ लाभ के लिए नहीं जाते, वो अपने में पूर्ण होते हैं, वो कुछ अपनी भक्ति का अंश उनको देकर के उनको प्रसाद करता है। तो भगवान की तो बात क्या, इसलिए यहां भक्तों के माध्यम में छोटे में ही बड़े का दर्शन। दूसरी बात, आप भगवान होकर के भी भक्त के अवतार के रूप में आप यहां पर आए, इसलिए उनकी भक्त के रूप में ही कारण, जब इतनी आपकी इस रूप में महिमा है तो उस रूप की नजर महिमा कितनी होगी। इसलिए यहां पर भक्त भाव से ही भागवतों की ही वंदना यहां पर करते हैं, जो उनका ऐसा प्राचीन काल में ऐसा समझा जाता है, जिसके घर में ऐसा स्वर्ण परम भागवत वैष्णव जिस घर में नहीं आता जाता वो स्मशान भूमि की था। भक्त लोग भी ऐसे भक्तों के पास में जाया करते थे गृह करते और उनको दीपना कराते थे भगवान का भजन करने के लिए। आजकल तो जाने पर दरवाजे में ही वो फोन टॉप होता है ना, वो रख देते थे, बड़े बड़े चपरासियों पर रखते, देखो सभी कोई आ जाए कोई बात नहीं, चोर डकैत भी आ जाएगा तो स्वागत करना, किंतु टीकी धारी माला धारी और टीका धारी कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश न करने पाए, पहले से एकदम सब तैयार करके रहे, वो कुछ मांगने के लिए आएगा। और आजकल का साधु समाज भी ऐसा ही पतित हो गया है, मांगने की दृष्टि से जाते हैं, कल्याण क्या करेंगे उनसे भी गए देते रहते हैं। आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग उनको स्वीकृति कुछ कराने के लिए, कुछ उपदेश देने के लिए जाएंगे, अपने गुरु जी का उपदेश सुना है तीन की भांति उनको बांट देने के लिए जाएंगे, इस भावना से दिन हिंदू पाकर दांत नहीं तोड़ करके उनके सामने कुछ मांगने मत जाए, हमको पासा राबड़ी दे दीजिए, मैं तो ये और चीज नहीं खाता या और कुछ ऐसा फल हमको दे दीजिए, हमको कुछ खाने के लिए दीजिए, हमारे कपड़े फट गए हैं, धार्मिक को करते हैं भगवान उसकी बड़ी व्यवस्था की। यदि कोई ठीक ठीक भगवान का भजन करेगा वो लोग सब देकर के अपने को किताब की समझेंगे और उनका ठीक ठीक भगवान और गुरु को अर्पण करके तत्व। आप लोग भी संसारी लोग भी जो प्रिय मरा करके भजन करने वाले हैं इन सब आदर्शों को ग्रहण करके धीरे धीरे ये सब बहुत सी शिक्षाएं इन सब विचारों के चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों के लिए सब खरा पड़ा है। अमाशन में ब्राह्मण आदि सहम प्रेक तुम्हार दर्शन गर्भित हो, कहते हैं कि हमारे साथ में हजारों ब्राह्मण आए बड़े देखे लगे हैं और पुरुष सुक्त लक्ष्मी सुक्त इत्यादि का उच्चारण कर रहे हैं, स्नान कर रहा हूं, किस लिए कर रहे हैं? हजार ब्राह्मण के साथ में किस लिए आए और उच्चारण कर रहे हैं पुरुष सुक्त और ये सब किस लिए? कुछ लाभ के लिए ना क्या क्या बात उसे दक्षिणा मिल जाए। अरे विपरीत घर में रह करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये यदि पुरुष उक्त कर दे तो इनके पास आने की क्या जरूरत है फिर तुम्हें पुरुष सुक्त तो भगवान के लिए है एक आदमी के लिए ये सब करें किंतु कह रहे हैं ये सब कामी चित्त भ्रमित हो गया है आपके दर्शनों से महापुरुष को कह रहे हैं कृष्ण हरि नाम सुनि सवार सवार अस्त्र नयने कृष्ण नाम सुना हरि नाम सुना हम लोग जो आप जो कह रहे हरि बोल हरि बोल कृष्ण 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 है अथवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं इसे सुन करके और आपके भाव को देख करके ये भी इनमें संचलित होकर के इनका भी चित्त आकृति प्रकृति तुम्हारा ईश्वर वक्ता आकृति और प्रकृति में तो तुम्हारा भगवान के लक्षण मिलते हैं जीवन आसंभ एक अपराधी प्रभु आपको देख करके जैसे चित्त इनका प्रसन्न हो रहा है गदगद हो रहा है प्रेम में भी हो रहा है या हमारा हो गया आपका स्पर्श कटने से ही हमारे चित्त में प्रेम एकदम ये जीवों के संग से नहीं इसलिए ऐसा मालूम होता है कि आप स्वयं भगवान है प्रभु कहे प्रभु उसका उत्तर देने में प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत उत्तम आप महाभागवत उत्तम भागवत ही नहीं महाभागवत और महाभागवतों में भी उत्तम ये किसके लिए होगा ये सिद्ध महापुरुषों के लिए सब प्रकार के लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि आपका आधार नहीं है उन्होंने तो इनको भगवान साबित किया और ये उल्टे उनको भी कह रहे हैं आप महा महाभागवत उत्तम है महाभागवत उत्तम कुमार तुमने सवाल ग्रहण को कभी बनो हमारे दर्शन से नहीं तुम्हारे दर्शन से हुआ महाभागवत का लक्षण क्या है प्रार्थना राशि वाला जो समस्त प्राणियों में भगवान के भावों को अपना जैसा दर्शन करता है और समस्त जीवों में भगवान को देखता देखता है और भगवान में सबको देखता है आत्मनि अपने में भी अपने भाव के जैसे मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूं ऐसे जीव मात्र ही भगवान का सेवक है ये देखते हैं और सबको भगवान के स्वरूप में देखते हैं और भगवान को देखते हैं सत्य हृदय में सब कुछ में उनको कहा जाता है भागवत ऐसे लोगों का दर्शन से जीवन की प्राप्त हो जाए भगवान का दर्शन होना सहज है किंतु इन लोगों का दर्शन होना बड़ा कठिन है जब किसी प्रकार से हो जाए तो जीवन सफल हो जाए तो वो कारण है पहले की कथा हमी माया का भी संन्यास महाप्रभु जी का मैं तो माया का भी संन्यास माया का भी संन्यास थे इन्हें दीनता करते था उस समय में जिस समय में महाप्रभु जी गए उसमें अधिकांश भारतवर्ष के जितने भी संन्यासी होते थे और वैष्णव लोग इस तरह से बेच नहीं लेते महाप्रभु प्रचार की दृष्टि से देखा है कि जब मैं सफेद कपड़े मरा कर चुका हूं विश्व में प्रचार नहीं इसलिए आदर्श बन करके उनको प्रचार कर इसलिए पहले गोपाल मंत्र लिया किससे पूरी से दीक्षा लिया और उसके बाद में बेच लिया किससे इसलिए गुरु गुरु में कौन हुए ईश्वर पूरी बात ही गुरु है दीक्षा पेश वाला का विचार आचार उतना नहीं लेते किंतु हाँ वो पूज्य होना चाहिए केवल बेश मात्र आश्रय मुझे बल्कि उन लोग हम लोगों का मंत्र है संन्यास का वो है गोपियों का बेश भाव में और उन लोगों का क्या है तप और मस्म तत्वमसी मैंने क्या होता है तत् त्वम असि तुम वही ब्रह्म इसका प्रधान और जो शंकराचार्य लेते हैं। इसलिए जब किसी को संन्यास देते हैं कहें तुम यही मंत्र जपना कि मैं भी वही हम ब्रह्मास्मि नहीं तत्म वश किंतु वैष्णव भी इसका तात्पर्य लेते हैं क्या तत्म तम असी तुम उनके सेवक हो हम लोग का संन्यास कर लिए हम उनके सेवक और उनमें होता है तुम वही तो महाप्रभु जी ने अपने गुरु जी के कान में बताया अच्छा आप इसका कौन सा अर्थ समझते हैं दोनों में से बताइए कौन सा अर्थ समझते हैं देखिए मैं दो अर्थ आपको बतलाता हूं तब तुम असी तुम ही वही हो और दूसरा अर्थ जो वैष्णव करते हैं जो हम लोग का अभिप्राय है वह यह है कि तुम उनके तस्वतम दासो असि तुम उनके दास हो ये कह करके हम इसी भाव पर आपका कौन सा विचार है बोलिए तो मैंने प्रकरांतर रूप में उनको यह मंत्र दे करके और अपना शिष्य बना करके फिर उनसे प्रश्न बना करके तब उन्होंने पेश किया कि तुम सब समय मर्यादा रहेगी जिनसे शिक्षा लेते हैं गोपाल मंत्र की ही प्रतिष्ठा अधिक
रहेगी
है किंतु मूल है गुरु मूल जिसे दीक्षा इत्यादि प्राप्त हुई और जिससे उनको वो भावना मिली है जिसने भावना दिया दीक्षा दिया दीक्षा मैंने उसने प्रतिष्ठित हुई भावना में की इसलिए गुरु इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने को करें अरे मैं तो सन्यासी हूं मायावादी क्योंकि ऐसे ही है किंतु आपके दर्शन से हमारा चित्त भी प्रवीण हो गया ये साधारण गुरु इसलिए आप महाभारत उत्तम है अमित कुमार श्री कृष्ण प्रेरणा एक ज्ञानी कठिन हो हृदय सूरी थे इसलिए साधारण पर्वाचार्य ने हमको हमारा कठिन हृदय शोधन करने के लिए आपके पास वो कहते थे सात भाव ने उनको भेजा था हमको भेजा था हमारा हृदय शोधन करने के लिए और वो कहते कि आपको उन्होंने भेजा हमारा कल्याण करने के लिए आया दोनों दूसरों की प्रतिष्ठा और प्रशंसा था दोनों की बात ठीक अपने अपने दृष्टिकोण से महाप्रभु जी दीक्षित करें उनको लेना है एक भाव क्या वो भी भाव राधा जी का भाव है इसलिए वो बेटा ये ठीक है मां भागवतोत्तम के लिए नहीं पाया जाए और ये ठीक करें कि हमारा कल्याण करने के लिए उन्होंने भेजा ये भी ठीक है क्यों महाप्रभु जी ने उनको उसी समय में वो रसराज महाभाव दर्शन करा करके उसकी उपलब्धि करा करके उनको भी मोहित कर दिया इसलिए गुरु की बात ठीक है आज यही पत्र है आगे पंचायत
इंद्र बंधु कैसे बंधु
कृष्ण।